समाजवाद के पक्ष में तर्क, समाजवाद के विपक्ष में जो विभिन्न तर्क दिए गए हैं उनके आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि समाजवाद एक सारहीन दर्शन है। समाजवाद वर्तमान विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा है और विश्व में जिस शीघ्रता के साथ इस विचारधारा का प्रचलन हुआ है उससे यह स्वतः सिद्ध है कि औद्योगिक विश्व की वर्तमान और भविष्यकालीन सभी समस्याओं का एकमात्र हल समाजवाद ही है। आज के तथाकथित पूंजीवादी राज्य भी किसी न किसी रूप में उन बातों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं जिनका समर्थन समाजवाद द्वारा किया जाता है। समाजवाद के पक्ष में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातें कही जाती हैं। पहला, समाजवाद के प्रति की गई अधिकांश आलोचनाएं भ्रमपूर्ण हैं। समाजवाद के आलोचकों द्वारा व्यक्ति को आलसी, निकम्मा और कमजोर मानकर इस बात का प्रतिपादन किया जाता है कि समाजवादी व्यवस्था में उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों का उद्योग के साथ लाभ हानि का प्रश्न जुड़ा होने के कारण उन्हें कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती और उत्पादन में कमी हो जाती है। आलोचकों का यह विचार मानव स्वभाव की रूटीपूर्ण मान्यता पर आधारित है। इस संबंध में प्रोफेसर जॉर्ड लिखते हैं कि मुख्यतः स्वभावतः कमजोर कामचोर कर्मचारी नहीं होते, वे तो केवल अधिक कठोर, गंदे और अत्यधिक परिश्रम के कार्यों से बचना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था में विज्ञान की सहायता से कठोर और गंदे कार्यों को हल्का व आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्यों में समाज की सेवा को जागृत और विकसित किया जा सकता है जिससे संपूर्ण मानव समाज का हित होगा। समाजवाद से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी यह भी एक भ्रांति है। इस संबंध में प्रोफेसर विलियम मॉरिस का विचार है कि समाजवाद के अंतर्गत व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्रता अधिक व्यापक रूप में वितरित हो जाएगी और वास्तविक परिवर्तन यह होगा कि व्यक्ति सही अर्थों में एक नागरिक बन जाएगा। समाजवाद में प्राप्त आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्वतंत्र कर देगी। समाजवाद को सर्वाधिकारवाद पर आधारित नौकरशाही व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था में भी सभी कार्य वही व्यक्ति नहीं कर सकता जो व्यवसाय के लाभ हानि का भागीदार होता है। कर्मचारी वर्ग का सहारा तो दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समाजवाद का लक्ष्य उत्तरदायित्वपूर्ण है न कि निरकुंशतापूर्ण। समाजवाद की आलोचनाएं तो भ्रमपूर्ण है ही, इसके विपरीत समाजवाद कुछ सकारात्मक श्रेष्ठताओं पर आधारित है। दूसरा, समाजवाद वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों का प्रभावशाली वर्णन है। समाजवाद वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों का स्पष्ट, विस्तृत और प्रभावशाली वर्णन है। समाजवाद पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत निर्धन वर्ग के दुखों और कष्टों का व्यापक वर्णन करता है और नागरिकों को पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां दूर करने का संदेश प्रदान करता है। लेवलिए के अनुसार समाजवाद वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की बुराइयों और असमानताओं को ध्यान आकर्षित कर सभी सहदद व्यक्तियों में इन बुराइयों को दूर करने की इच्छा उत्पन्न कर एक महान सेवा की है। तीसरा, समाजवाद आज की आर्थिक व्यवस्था का सुंदर हल है। समाजवाद वर्तमान आर्थिक जीवन की बुराइयों का वर्णन करने के साथ साथ इन बुराइयों को दूर करने का व्यवहारिक मार्ग भी बतलाता है। आज के समाज में जो भी शोषण, अन्याय तथा भीषण असमानता दिखाई देती है उन सब का मूल कारण पूंजी का असमान वितरण और उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है। ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना हो जाए और सबको उपभोग के लिए बराबर मिले तो वर्तमान काल की सभी आर्थिक और उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामाजिक तथा राजनीतिक बुराइयों का अंत हो जाए। इस संबंध में पूंजी तथा संपत्ति के राष्ट्रीयकरण द्वारा समाजवाद एक निश्चित कार्य क्रम तथा सुझाव रखता है, जिसके आधार पर एक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। चौथा, समाजवाद में संपत्ति का अवश्य अपव्यय नहीं होता। व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था में आपसी प्रतियोगिता के कारण विज्ञापन आदि पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। किसी वस्तु के उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचने में उसे अनेक मध्यस्थों के हाथों से गुजरना होता है और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को वह वस्तु खरीदने के लिए उसके लागत मूल्य से बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने तथा विज्ञापन और मध्यस्थों की कोई आवश्यकता न होने के कारण बहुत अधिक मितव्ययता संभव हो सकेगी। पांचवा, समाजवाद सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है। समाजवाद का लक्ष्य समानता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाजवाद सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर देने की व्यवस्था करता है। समाजवाद व्यक्तियों और राष्ट्रों के चरित्र एवं भाग्य निर्धारण में वातावरण के महत्व को स्वीकार करता है और एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर देता है जिसमें प्रत्येक के द्वारा अपने व्यक्तित्व का उच्चतम विकास किया जा सके। समाजवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा शक्ति एवं योग्यता के अनुसार ही काम देने पर जोर दिया जाता है। छेवा, समाजवाद परिश्रमीवाद वर्ग का अंत कर देगा। समाजवादी दर्शन जो काम नहीं करेगा वह खाएगा भी नहीं के विचार पर आधारित है। इसे स्पष्ट है कि समाजवाद में स्वयं परिश्रम कर रोजी कमाने वाले वर्ग को ही जीवित रहने का अधिकार होगा और आज की सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान परिश्रमी जीवी पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाएगा। समाजवाद का यह विचार और कार्य पूर्णतः न्यायोचित है। छेवा, समाजवाद भारतत्व तथा समाज सेवा भाव को बढ़ाता है। समाजवादी राज्य समानता पर आधारित होगा और इस राज्य के सदस्य आधुनिक हानि लाभ के विचार को ध्यान में रखते हुए भ्रातृभाव की और अग्रसर होंगे। व्यक्तियों पर समाजवादी व्यवस्था को अपनाने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा और इस बात की आशा की जा सकती है कि समाजवादी व्यवस्था में उनकी प्रवृत्ति व्यक्तिगत स्वार्थों की दृष्टि के स्थान पर सामूहिक हितों की साधना ही होगी आएगी। आठवां, समाजवाद एक न्यायपूर्ण तथा जनतांत्रिक विचारधारा है। राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद जनतंत्र के प्रति विश्वास व्यक्त करता है, क्योंकि राजतंत्रीय या कुलीनतंत्रीय व्यवस्था में अनिवार्य रूप से विद्यमान भेद समाजवाद को मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त समाजवाद उत्पादन पर सामूहिक स्वामित्व और उसकी सामूहिक व्यवस्था का समर्थक है, जो पूर्णतः प्रजातंत्रीय तथा न्यायोचित विचार है। वास्तव में प्रजातंत्र और समाजवाद परस्पर पूरक हैं और जिनमें से एक राजनीतिक समानता का प्रतिपादन करता है तो दूसरा आर्थिक समानता का। लेडलर के शब्दों में प्रजातांत्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में प्रजातंत्र ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा के आधारभूत तत्वों के सभी वर्गों के लोग स्वीकार करते हैं और समाजवाद के व्यवहारिक रूप के संबंध में मतभेद होते हुए भी यह सर्वत्र ही स्वीकार कर लिया गया है कि लोक कल्याण की दृष्टि से राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र और मानव जीवन के सभी पक्षों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखा जाना चाहिए। समाजवाद के पक्ष में सबसे बड़ा व्यवहारिक तर्क यह है कि आज के पूंजीवादी राज्य भी उन सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणित करने हेतु प्रयत्नशील है जिनका प्रतिपादन समाजवाद करता है। आज मानव जाति एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जिसके सभी मार्ग समाजवाद की ओर ले जाने वाले हैं। व्यक्तिवाद और समाजवाद। व्यक्तिवाद और समाजवाद आधुनिक राजनीतिक चिंतन की सबसे अधिक प्रमुख विचारधाराएं हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपियन देशों के द्वारा व्यक्तिवादी व्यवस्था को अपनाया गया था और इस व्यवस्था को अपनाने के जो दुष्परिणाम प्रकट हुए उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही समाजवाद का जन्म हुआ। व्यक्तिवाद और समाजवाद इन दोनों ही विचारधाराओं का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। प्रोफेसर जोर्ड के शब्दों में समाजवादियों और व्यक्तिवादियों के उद्देश्य में विशेष अंतर नहीं है। दोनों ही व्यक्तियों को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में हैं, लेकिन इन विचारधाराओं के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों विचारधाराओं के भेदों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों से किया जा सकता है। पहला, दोनों विचारधाराओं के मूल आधार में भेद। इन दोनों विचारधाराओं के मूल आधार में आधारभूत भेद है। यदि व्यक्तिवाद व्यक्ति को केंद्र मानकर चलता है तो समाजवाद समाज को। व्यक्तिवाद का विचार है कि व्यक्ति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और समाज एवं राज्य व्यक्तियों के समूह मात्र ही हैं। इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को ही केंद्र मानकर कर लिया जाना चाहिए। व्यक्तिवाद व्यक्ति को साध्य एवं समाज और राज्य को मानव व्यक्तित्व के विकास का साधन मात्र मानता है। इसके नितांत विपरीत समाजवाद समाज पर आश्रित है और उसका सिद्धांत है कि व्यक्ति समाज के लिए है, समाज व्यक्ति के लिए नहीं। समाजवाद का विचार है कि समुचित कल्याण में व्यक्ति ही व्यक्ति का कल्याण निहित करता है और सामाजिक हित की साधना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जाता है कि जहाँ व्यक्तिवाद व्यक्ति के हितों पर आधारित है, वहाँ समाजवाद का आधार समाज और सामाजिक हित है। दूसरा, राज्य के संबंध में भेद। व्यक्तिवाद राज्य का विरोध करते हुए कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादियों का विचार है कि राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव में निहित स्वार्थ और संघर्ष की भावना के कारण हुई और इसलिए राज्य आवश्यक होते हुए भी मानव के नैतिक कल्याण में सहायक न होकर बाधक ही है। इसके अतिरिक्त समाजवाद राज्य को अनिवार्य और नैतिक संस्था मानता है। राज्य समाज का राजनीतिक रूप है और समाज व्यक्ति की समिष्टि, व्यक्ति का सुखहित और विकास सब कुछ राज्य के कारण और राज्य के अंतर्गत ही संभव है। राज्य मानव जीवन की सामाजिक और सद्गुणों का परिणाम है और व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण राज्य के अंतर्गत रहने से ही है। इस प्रकार जहाँ व्यक्तिवाद राज्य को एक बुराई मानता है, समाजवाद इसे मानव स्वभाव की सामाजिकता पर आधारित एक सकारात्मक सद्गुण मानता है। तीसरा, राज्य के कार्यों में भेद। व्यक्तिवादी राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करने के पक्ष में है। व्यक्तिवादी स्पेंसर कहता है कि राज्य की सत्ता इसलिए आवश्यक है कि समाज में अपराध है, अतः राज्य का कर्तव्य रक्षा करना एवं अपराधों को रोकना है, न कि सार्वजनिक हित का पोषण करना। व्यक्तिवाद का विचार है कि व्यक्ति पर आधारित होने के कारण राज्य व्यक्ति का और विकास में सहायक न होकर बाधक ही होता है, अतः राज्य के द्वारा कम से कम कार्य ही किए जाने चाहिए। समाजवाद के अनुसार राज्य को न केवल निषेधात्मक वरन सकारात्मक कार्य भी करने चाहिए। व्यवहार में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के अतिरिक्त राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो व्यक्ति को सुखी, समृद्ध और संतुष्ट करते हैं। समाजवाद का लक्ष्य एक पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जाते हैं। चौथा, मानव स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण में भेद। मानव स्वतंत्रता के संबंध में भी व्यक्तिवादी और समाजवादी विचारधारा में आधारभूत भेद है। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव है, और यदि व्यक्ति पर कोई भी नियंत्रण हो तो उसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। व्यक्तिवाद के अनुसार मानव स्वतंत्रता व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करने में ही निहित है, और यह तभी संभव है जब राज्य का समाज के दूसरे व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति विशेष के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। मानव स्वतंत्रता के संबंध में अपनी इस धारणा के आधार पर व्यक्तिवादी व्यक्ति को अकेला रहने दो का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन समाजवाद के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता अनियंत्रित रूप से सभी प्रकार के कार्य करने में नहीं, वरन केवल उन्हीं कार्य को करने में निहित है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से करने योग्य और वांछनीय हैं। समाजवाद के अनुसार साधारणतः सामाजिक और राजनीतिक बंधनों के अंतर्गत रहकर जीवन व्यतीत करने में ही स्वतंत्रता निहित है। वास्तव में यदि व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है तो समाजवाद व्यक्ति की पारंपरिक समानता पर एम टंगन बोरोवस्की के अनुसार आधुनिक समाजवाद को नैतिकता का मौलिक आधार मनुष्य की समता के सिद्धांत को स्वीकार करना होना चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है कि यदि व्यक्तिवाद व्यक्ति के हितों पर आधारित है तो समाजवाद का आधार समाज और सामाजिक हित है, किंतु समाजवाद सर्वमान्य जनता के हितमर आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक कुछ सीमा तक राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के पक्ष में है। पांचवा, आर्थिक व्यवस्था के संबंध में भेद। व्यक्तिवाद आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है, और उसका विचार है कि राज्य के द्वारा स्वाभाविक आर्थिक शक्तियों और प्रवृत्तियों के कार्य में कोई बाधा न डाली जानी चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिवाद और समाजवाद, इन दोनों विचारधाराओं का अंतिम लक्ष्य एक ही, मानव कल्याण और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों में इन दोनों विचारधाराओं में भेद है। जहां व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर बल देता है, वहां समाजवाद समानता पर बल देता है।